नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा, कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तान के दावों को निराधार बताया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा, चीन के बढ़ते विस्तार के बीच द्वीप अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है और भारत ये किस प्रकार करता है कोई और तय नहीं कर सकता। चेन्नई में आईआईटी मद्रास टेक्नो एंटरटेनमेंट उत्सव शास्त्र 2026 के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेगा। विदेश मंत्री ने देश की पड़ोस नीति का उल्लेख करते हुए कहा, भारत को शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से होने वाले आतंकवाद से स्वयं की रक्षा करने का अधिकार है।
यदि कोई देश जानबूझकर और लगातार आतंकवाद को जारी रखता है तो हमें अपने लोगों को आतंकवाद से बचाने का पूरा अधिकार है और ऐसे में इस अधिकार का प्रयोग कैसे होगा ये भी हम तय करेंगे।
भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने संबंधी पाकिस्तान के दावे को निराधार बताया है। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान भ्रामक और असत्यापित सैटेलाइट तस्वीरों का प्रसारण करके भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के झूठे दावे कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि इन दावों में सच्चाई नहीं है। तस्वीरों में दिखाए गए स्थानों के स्वतंत्र सत्यापन से कथित ठिकानों पर किसी प्रकार की तबाही के दृश्य नजर नहीं आने से इस दावे के झूठ की पुष्टि होती है। सूत्रों ने कहा कि इस पोस्ट में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को धमाके से नुकसान पहुंचने या संरचनात्मक क्षति होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने की बढ़ती घटनाओं के बीच पाकिस्तानी बलों द्वारा दो और बलूची नागरिकों को जबरन गायब करने के मामले सामने आए हैं। इन घटनाओं की निंदा करते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने कहा कि केच जिले के मूल निवासी हेमदान को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों द्वारा 30 दिसंबर को कराची के उसके निवास से उठा लिया गया। मानवाधिकार निकाय ने इस गतिविधि को बुनियादी मानवाधिकार और कानून का एक गंभीर उल्लंघन बताया है। मानवाधिकार संगठन पांक के अनुसार एक अन्य बलूची नागरिक यासिर नासिर को केच जिले में 31 दिसंबर को तड़के एक छापेमारी के दौरान पाकिस्तानी बलों द्वारा हिरासत में ले लिया गया। पांक ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद यासिर के ठिकानों की कोई जानकारी नहीं मिली है, इससे उसकी सुरक्षा और उसकी सलामती को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। पाकिस्तानी बलों द्वारा बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच इस प्रांत के हरनाई जिले के एक निर्जन स्थान से 4 अज्ञात लोगों के शव बरामद किए गए हैं। ईरान में बढ़ती कीमतों और आर्थिक मंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 दिसंबर 2025 को गंभीर आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल गए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की तो वे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आ जाएंगे। ट्रंप की टिप्पणी पर ईरान की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं ने आगाह किया है कि किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से पश्चिम एशिया में अस्थिरता पैदा होगी, जबकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी अपने मुद्दों को आंतरिक रूप से हल करेंगे। एक रिपोर्ट।
वर्ष 2022 के बाद से ईरान में इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तेज आर्थिक मंदी इसका कारण मानी जा रही है। ईरानी रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है और मुद्रास्फीति 40% से अधिक हो गई है, जिससे परिवारों की क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। तेहरान में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुआ ये आंदोलन तेजी से 20 से अधिक प्रांतों में फैल गया है, जिनमें प्रमुख धार्मिक केंद्र भी शामिल हैं। भीड़ सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है। मानवाधिकार समूहों ने अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत की जानकारी दी है। सत्यापित वीडियो क्लिप्स में सुरक्षा प्रतिष्ठानों के पास झड़पें और सड़कों पर आक्रोशित लोग दिखाई दे रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा है कि चीन के बढ़ते विस्तार को देखते हुए हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। सैन्य अभ्यास के दौरान चीन द्वारा ताइवान की ओर रॉकेट दागने के बाद श्री चिंग का ये बयान आया है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ताइवान के लोगों द्वारा अपनी आत्मरक्षा के दृढ़ संकल्प को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में उनका रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे और राष्ट्रीय रक्षा को मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2026 ताइवान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ताइवान को सबसे बुरे हालात के लिए योजना बनानी चाहिए, लेकिन अच्छे की उम्मीद भी रखनी चाहिए। अमेरिका के विदेश विभाग ने कल कहा कि ताइवान और क्षेत्र के अन्य स्थानों के निकट चीन की सैन्य गतिविधियां अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ा रही हैं। अमेरिका ने चीन से लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप के खिलाफ सैन्य दबाव रोकने का आग्रह किया है। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ ने कहा है कि पिछले वर्ष दुनिया भर में कुल 128 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की हत्या हुई, जिससे 2025 पत्रकारिता के लिए सबसे घातक वर्षों में से एक बन गया। पत्रकार संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व और अरब जगत सबसे खतरनाक क्षेत्र था, जहां मुख्य रूप से संघर्ष रिपोर्टिंग के कारण 74 मौतें हुई, जो वैश्विक कुल मौतों का लगभग 58% है। अकेले फिलिस्तीन में 56 पत्रकार मारे गए, इसमें ज्यादातर पत्रकार गाजा युद्ध से संबंधित थे। अन्य प्रभावित देशों में यमन में 13, यूक्रेन में 8, सूडान में 6, भारत और पेरू में 4-4 मौतें तथा पाकिस्तान, मैक्सिको और फिलीपींस में 3-3 पत्रकारों की मौत हुई। दक्षिणी और मध्य मैक्सिको में आज भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। मैक्सिको की राष्ट्रीय भूकंपीय एजेंसी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.5 मापी गई है। इस भूकंप का केंद्र अकापुल्को के प्रशांत तट रिजॉर्ट के पास दक्षिणी प्रांत गुरेरो में सैन्य मार्को शहर के निकट था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने भारतीय यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा से पहले दवाइयां ले जाने की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की सलाह दी है। ये परामर्श सऊदी अरब ने देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत उपयोग की दवाओं को लाने ले जाने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा मंच शुरू करने के बाद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। 11वीं भारत अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन चैंपियनशिप 2026 आधिकारिक तौर पर 4 से 10 जनवरी तक चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप का शुभारंभ कल चेन्नई में हुआ। ये भारत की सबसे लंबे समय से और निरंतर चली आ रही अंतर्राष्ट्रीय युवा नौकायन प्रतियोगिता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि भारत अपनी रक्षा कैसे करे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के पाकिस्तान के दावों को निराधार बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी। और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा, चीन के बढ़ते विस्तार के बीच द्वीप अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।